हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 19। भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैषितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैषितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैषितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। शब्दों का अर्थ, इह अर्थात इस जीवन में, एव निश्चित ही, तय उनके द्वारा, जितः जीता हुआ, सर्ग अर्थात जन तथा मृत्यु, येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां जिनका साम्ये समता में स्थितम स्थित है मनः मन, निर्दोषम ही निर्दोष अर्थात दोष रहित ही निश्चय ही, समं ब्रह्म अर्थात समान है ब्रह्म की तरह, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, तस्मात् अतः ब्रह्मणि अर्थात परमेश्वर में, ते वे स्थिता स्थित होता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अनुवाद, जिनके मन एकत्व में तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक में जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बताए गए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट नंबर 19। भगवान बता रहे हैं कि जिनके मन एकत्व में स्थित हुए इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। कि मन को क्या करना है, साम्य का मतलब होता है कि समता, इक्वमिनिटी, कि एक ही चीज, आप हर चीज जो है वो इक्वल आपको दिखे। कि पहले भगवान ने क्या बताया श्लोक नंबर 18 में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। कि वो जो वास्तव में विद्यावान होता है उसे नम्रता प्राप्त होती है और वो चाहे कुछ भी देखता है, यानी जीवों में, पहले जीवों की बात हुई थी ना, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो या पशु ही क्यों न हो, वो समदर्शी होता है। और आज क्या बता रहे हैं, आज भी समदर्शी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो सम यानी कि संसार में जो द्वंद्व होते हैं ना, अच्छा बुरा इत्यादि, उन द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाता है। वास्तव में भक्त जब तक भी कोई भौतिक धरातल पर होता है उसके जीवन में द्वंद्व होते हैं, और जब कोई आध्यात्मिक धरातल पर आता है तो वो उन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। अब द्वंद्व जो है, मैं शब्द को अभी क्योंकि बार बार इसी के विषय में बात चल रही है तो इसको पहले समझे कि उसको क्या होता है वो द्वंद्व। देखो द्वंद्व मतलब मान अपमान, शोहरत जिल्लत, और हार जीत, आनंद और दुख पेन, सर्दी गर्मी और अच्छा बुरा, जो भी इस संसार में हमको दो चीजें दिखती हैं कि ये आई लाइक दिस आई डोंट लाइक दिस, है ना, दो चीजें हमें हमेशा लगती हैं, ये मुझे पसंद लगता है ये मुझे पसंद नहीं लगता। तो इस संसार में हर जगह जीव इस द्वंद्व का अनुभव करता है ना। हर व्यक्ति उसी वस्तु को ग्रहण करने का इच्छुक होता है जो कि उसको पसंद लगती है, और क्योंकि वो उसको प्राप्त करके आनंदित होना चाहता है। अगर मन भौतिकता में स्थित होता है तो जाहिर है जीव ऐसी भौतिक स्थिति को प्राप्त करना चाहेगा जो उसको बहुत कंफर्ट लगे, यानी कि उसकी इंद्रियों को अच्छी लगेगी, वही चाहेगा ना। अभी कौन चाहेगा कि मुझे तेज धूप के नीचे बैठना पड़े, नहीं, उसको क्या चाहिए होगा कि नहीं मुझे कंफर्ट एसी के रूम में बैठा। और अगर सर्दी होगी तो वो क्या चाहेगा कि हल्की सी धूप में जाके बैठो। तो जैसा भी उसको अच्छा लगेगा ना वैसा ही वो एटमोसफियर चाहिए होगा उसको, और वो वस्तु जो इंद्रियों को दुख देता है उसको त्यागेगा। लेकिन जीवन जो है उसमें ये जो प्रकृति है ना वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार वो वस्तु प्रदान करती है जो कि भले हमें अच्छी लगती हो या नहीं अच्छी लगती हो, हाँ उससे प्रकृति को कोई लेना देना नहीं लगता। आपको अगर ये चीज अच्छी नहीं लगती है या वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है या वो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपको वही प्राप्त होगा, है ना। तो इस संसार में हमेशा जब तक हम भौतिक धरातल पर तक रहेंगे, जब तक हमारा जो मन है वो भौतिक धरातल पर स्थित होगा तो हमको दुख प्राप्त होगा, क्योंकि हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो हमें पसंद नहीं लगेगी और जिसके कारण हम दुख भोगेंगे। वास्तव में हमें आनंद जो आता है वो किसी भौतिक वस्तु या व्यक्ति में नहीं होता, बल्कि ये तो हमारी आसक्ति है जिसके कारण हमें आनंद मिलता है। जो आसक्ति किसी वस्तु को सुखमय बना देती है और वही आसक्ति अनासक्ति अगर होती है तो वही वस्तु दूसरे के लिए दुखमय होती है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, दूध, किसी को दूध अच्छा लगता है तो उसको आप एक कप दूध दोगे तो वो कितना खुश होगा, लेकिन वैसे ही बच्चे को दूध अच्छा नहीं लगता तो माँ उसको जैसे पनिशमेंट की तरह दूध दे रही, पीना तुमको पीना पड़ेगा। तो वास्तव में ये जो आनंद है वो उस वस्तु में नहीं है बल्कि हमारी अपनी आसक्ति में है। हम जितना किसी भी वस्तु में एब्जॉर्ब होते हैं उतना ही वो वस्तु हमें आनंदित करती है। जैसे कि अगर एक बच्चा किसी खिलौने के साथ खेलकर आनंदित हो रहा है तो ये उसकी एब्जर्वेशन के कारण, क्योंकि वो उसमें इतना एब्जॉर्ब हो गया है, उतना लीन हो गया है, उसमें इतना आसक्त हो गया है तो उसमें आनंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़े समय के बाद क्या होता है, कि उसमें वो आसक्ति खत्म हो जाती है, फिर आप उसको कितना भी बजा के देखा हो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो उसको आनंद नहीं दे रहा होता। उसी प्रकार जैसे हमारे समक्ष बहुत टाइप टाइप के प्रसाद रखे हों, परंतु यदि हमारा मन नहीं लग रहा उसमें, मन दुखी है, भगवान न करे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई जिससे हम प्रेम करते वो हमसे बिछड़ गया है, तो भले कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन हमारे सामने रखा होगा तो हमको वो आनंद नहीं देगा, किसी भी चीज में आनंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसका मन जिस चीज में एब्जॉर्ब है वो इतनी दुखमयी है कि कोई भी चीज आपको आनंद नहीं दे रही। मतलब प्रिंसिपल ये है कि जिस व्यक्ति या वस्तु में आप जितना एब्जॉर्ब होते हो, जितनी आपकी आसक्ति या अट्रैक्शन जिसके अंदर होती है, जितना आप उसमें लीन होते हो उतना ही वो आपको आनंद देगी। और ये भौतिक रूल है और यही रूल आध्यात्मिक जीवन में भी है। हम जितना जितना भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, जितना जितना भगवान के अंदर लीन होते हैं, जितना जितना भगवान के अंदर अपने प्रेम को स्थापित करते हैं उनके नाम में, उनकी लीलाओं में, उनके गुणों में, उतना ही अधिक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात समझने की है, वो ये है कि इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तुएं, कितनी सारी वस्तुएं जो सदैव हम समझते हैं कि हम इसको प्राप्त करेंगे और ये हमें आनंद प्रदान करेगी, लेकिन वास्तव में वही वस्तु या वही व्यक्ति हमारे दुख का कारण बनता है। हमको पता नहीं चलता है, आज नहीं तो कल जो भी वस्तु या जो भी भौतिक व्यक्ति या जो भौतिक वस्तु जिसको हमने इतनी स्ट्रगल करने के बाद प्राप्त किया है वो हमारे दुख का कारण बनेगा, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। अब शाश्वत नहीं है इसका मतलब है आपने भले कितनी ही स्ट्रगल से उसको प्राप्त किया वो आपसे छीन ली जाएगी, और जिस समय आपसे छीन ली जाएगी उस समय आपके दुख का कारण बनेगी। भले वो व्यक्ति है जिसे आप कितना भी प्रेम करते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि या तो आप उससे दूर हो जाओगे या वो आपसे दूर चला जाएगा, है ना। भगवान उसको जैसे मृत्यु सर्वहरश्चाहम, तो वो किसी न किसी तरीके से हम संसार में जिससे भी अपना आकर्षण डेवलप करते हैं वो हमारे दुख का कारण बनती है। इसलिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति से कभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, भले ही उस वस्तु में हमारा कितना ही आकर्षण क्यों न हो, वो हमारी समस्याओं का समाधान उससे प्राप्त हो ही नहीं सकता, भले वो हमें प्राप्त भी हो जाए तो भी। इसलिए आत्म साक्षात्कार का पहला स्टेप क्या है कि इन भौतिक द्वंद्वों से मुक्ति, और इन द्वंद्वों से कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे नहीं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे जब हम मुक्त हो जाते हैं तो वो जो है वो आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार का पहला स्टेप है। वहां से भगवान स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से अब हम श्लोक को समझेंगे। भगवान कहते हैं इहैव तैर्जितः, इहैव का मतलब होता है इस जीवन में, यानी कि भगवान कहते हैं ये द्वंद्वों से मुक्ति जो है वो इसी जीवन में संभव है। एव माना निश्चय ही, तय माना उनके द्वारा, एव निश्चय ही इसी जीवन में जो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं उनके लिए येषां साम्ये स्थितं माना, येषां का मतलब होता है जो, जिनका साम्य स्थितं माना, साम्य मतलब एकता में। अब देखो जो हम द्वंद्व की बात कर रहे थे ना, इसको भगवान कह रहे हैं कि लाइक उस द्वंद्वों से आपको निकलना है और कहां पर स्थित होना है, साम्य यानी एकत्व, एकता में, इक्विमिनिटी में आपको स्थित होना है। किसको स्थित करना है, मन को स्थित करना है। मन, हाँ, भगवान ने पहले लाइन में कहा, इधर से शुरू करो, ये शाम साम्य स्थितम मन, यानी जिनके मन एकत्व में स्थित हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो, इहैव यानी इस संसार में ते माना उनके द्वारा जीता गया है सर्गो अर्थात जन्म मृत्यु का चक्कर, यानी कि अगर आप आध्यात्मिक धरातल पर आना चाहते हो, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? साम्ये स्थितम मनः, अपने मन को एकत्व में स्थित करना है ना। भगवान ने देखो, आप अनुवाद में देखो, जिनके मन एकत्व में तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म मृत्यु के बंधनों को पहले से ही जीत लिया है। येषां साम्ये स्थितं मनः इहैव तैर्जितः सर्गो, उसने जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लिया है। और उसके बाद वो कैसे हैं, भगवान आगे कहते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोष का मतलब होता है दोष रहित, जो अपराध रहित। किसकी तरह अपराध रहित? भगवान कहते हैं समम ब्रह्म, ब्रह्म के समान, वो ब्रह्म के समान निरअपराध होते हैं। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। मतलब वो भले ही भौतिक जगत में रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक में स्थित रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर, हमने कल पढ़ा था कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चै वशो पाके च पंडिता समदर्शन, तो समदर्शी का फल क्या मिलता है कि वो ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। अब मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो जीवन मुक्त होते हैं और दूसरा विदेह मुक्त होते हैं। लेकिन जो ब्रह्म में स्थित होता है, ब्रह्म में कैसे स्थित होगा, जब वो येषां साम्ये स्थितं मनः, जो जब वो द्वंद्व को समाप्त करेगा, ये जो ड्वेलिटी है उसको छोड़ के वो इक्विमिनिटी, एकत्व में आ जाएगा, समता में आ जाएगा। फिर मतलब फिर क्या होगा, वो ब्रह्म की तरह निर्दोष हो जाएगा और ब्रह्म में ही स्थित हो जाएगा। भले वो शरीर में रहेगा, लेकिन फिर भी मतलब जी रहे हैं शरीर में, फिर भी भौतिक शरीर से मुक्त आध्यात्मिक धरातल पर है। दूसरे शब्दों में, मन को समता में स्थित किया जा सकता है। यानी भगवान ये बता रहे हैं कि आपको येषां साम्ये स्थितं मनः, कि आपको अपने मन को समता में लाना है। ये जो द्वंद्व आपको दिख रहे हैं, वो इस जन्म में आप उस द्वंद्वों को खत्म कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे, तो फिर मन जो है वो अपनी पसंद नापसंद नहीं बताएगा, क्योंकि कंट्रोल में होगा। वैसे वास्तविक बात यह है कि मन की नेचर ये नहीं है कि वो वश में रहे। वश में रहना मन की नेचर है ही नहीं, परंतु यदि हम आध्यात्मिक धरातल पर शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को अवश्य वश में करना होगा। और जब मन वश में हो जाता है, तो समझो 50% बैटल इज ओवर, नहीं मोर देन हाफ, नहीं ऑलमोस्ट ऑल द होल बैटल इज ओवर, है ना। पूरा युद्ध इसी विषय में तो है कि मन वश में नहीं है। मन वश में हो गया तो समझो अब कुछ बचा ही नहीं। वास्तव में जब मन वश में होता है, तो वो स्वयं हमारी सहायता करता है। भगवान बताते हैं 6.6 में, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाशितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर सका, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और इसके बाद 6.7 में भगवान ने वही बात बताई है जो हमारे आज के श्लोक में बताई। भगवान 6.7 में कहते हैं, जेतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयो। जेतात्मनः प्रशांतस्य, यानी वो प्रशांत, जिसने मन को जीत लिया है, वो केवल शांत नहीं होगा बल्कि प्रशांत होगा। मन को वश में करके बहुत बहुत शांति, मतलब आध्यात्मिक शांति उसको प्राप्त हो जाएगी। और आगे कहते हैं, अनुवाद, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा समाहिता, कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। यानी कि ये जो द्वंद्व समाप्त होंगे वो कैसे समाप्त होंगे, जब हम मन को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि मन जो ये बोल रहा है द्वंद्व, तो मन की ओर से ही आ रहे हैं कि ये पसंद है नहीं पसंद, लेकिन मन कंट्रोल है तो फिर क्या है, वो प्रशांत शांति उसको प्राप्त होती है। और फिर शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान, उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने एक बहुत ही सुंदर बात भी बताई कि जब कोई अपने मन को कंट्रोल कर लेता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, परंतु जो व्यक्ति अपने अभी तक द्वंद्वों में फंसा हुआ है और मन को कंट्रोल नहीं कर रहा है तो भगवान से बहुत दूर है। मतलब भगवान भले इसके कितना भी करीब आ जाए, लेकिन जब तक वो अपनी आसक्ति में फंसा हुआ, अपनी आसक्ति अनासक्ति, ये पसंद है ये नहीं पसंद है, भौतिक चीजों में अभी तक उसका इतना आकर्षण होगा, तो भले भगवान उसके सामने भी खड़े हो जाएंगे वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। वास्तव में भक्त कोई भी सिचुएशन को भगवान की कृपा मानते हैं, ये नहीं सोचते कि ये सिचुएशन मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि ये सिचुएशन मेरे कृष्ण ने मेरे लिए क्रिएट की है, एंड कृष्णास प्लान्स आर मोर बेटर देन माय ड्रीम्स, है ना। भगवान ने जो मेरे लिए ये प्लान किया है, ये सिचुएशन क्रिएट की है, वो मेरे पास तो ज्ञान ही नहीं है ना, ना भूत का ना भविष्य का ना वर्तमान का, तो हो सकता है जो मेरी इच्छा है वो मेरे लिए अच्छी ना हो, लेकिन भगवान ने जो प्लान किया है वो कभी भी खराब नहीं हो सकता। जैसे मतलब भक्त जो है वो कभी अपने हालात के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए भगवान से कंप्लेन नहीं करता। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज कितने बड़े राजा थे, जब उसने देखा वो सम्यक ऋषि के आश्रम में आया, वो समाधि में लीन थे, है ना, वो समाधि में स्थित थे, उन्होंने राजा को देखा ही नहीं, वो इतना अपने भगवान के साथ लीन थे, इतना एब्जॉर्ब थे भगवान के अंदर, उनके ध्यान में, कि उनको कुछ दिखा ही नहीं। हालांकि जब नॉर्मली अगर राजा कोई आए, स्पेशली परीक्षित महाराज जैसे राजा अगर हमारे सामने आए, जो पूरी पृथ्वी के राजा है, तो सामान्यता का क्या करना चाहिए किसी ऋषि को, कि उनका आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन वो इतना ब्रह्म भगवान के अंदर इतना लीन थे कि सामने कोई राजा आया है या फकीर, उसको कोई परवाह ही नहीं है। उसी तरह जो ब्रह्म में स्थित होता है, उसको कोई भी सिचुएशन सामने आ जाए, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या है, मतलब वो इतना भगवान के प्रेम में लीन होता है। फिर भी अब उसके बाद क्या हुआ कि परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया, वो तो भगवान की कृपा, यानी कि अब महाराज परीक्षित जो भी उनके साथ हुआ वो सब भगवान की योजना है, कि भगवान की आज्ञा के अनुसार हुआ, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवतम महापुराण को रचना चाहते थे, इसीलिए तो परीक्षित महाराज ने एक मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। सम्यक ऋषि को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो समाधि में लीन थे, भगवान में स्थित था उनका मन। लेकिन जब सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने सुना तो उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि वो 7 दिन के बाद मरेंगे। लेकिन जब सम्यक ऋषि की समाधि टूटी और उन्होंने जब सुना कि उनके बेटे ने राजा को श्राप दिया है, तो वो बहुत दुखी हुए। मेरे साथ क्या हुआ है इसके लिए दुखी नहीं हुए कि राजा आया था और उसने मेरे गले में ऐसा किया, उसको क्रोध इसलिए नहीं आया, लेकिन दुखी हुए क्योंकि उनके बेटे ने राजा को श्राप दे दिया। फिर बेटे को समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर परीक्षित महाराज को जाके बताया कि अब ये सिचुएशन हो गई कि आपको 7 दिन के बाद मरना है। उस समय महाराजा परीक्षित भी समत्व में वो रुके हुए थे। अब किसी के सामने मृत्यु का प्रस्ताव आए कि आपको 7 दिन के बाद मार दिया जाएगा, अब मर जाओगे 7 दिन के बाद, उसका तो अब छोटी छोटी बातों पर हमारा टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, अब मरने वाला हूं तो समझो होश ही खराब हो जाए कि क्या करना। लेकिन महाराजा परीक्षित ने एकदम, भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने कोई भी ना पैनिक नहीं किया, कुछ भी नहीं, वो सब राज दे दिया अपने बेटे को और कहा कि चलो ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा, अब जाना ही है तो सही तरीके से जाएं। उस समय महाराजा परीक्षित कोई बूढ़े नहीं हो गए थे, इतना बड़ा राज्य था उनका, जवान थे, बहुत सारे सालों तक अभी भी राज्य कर सकते थे, परंतु जैसी भगवान की इच्छा, ऐसा करके वो ऋषि मुनियों को एकत्रित करके उनकी सभा में बैठे और कहा 7 दिन के बाद मरने वाला हूँ, कोई उपाय करो कि मेरे जीवन की सदगति हो। आज का अगर थोड़ा सा भी इसके पास पावर हो तो क्या वो ऐसा करेगा? मतलब हम कुछ भी करेंगे कि किसी तरह से हम बच जाए मरने से। लेकिन महाराजा परीक्षित को पता था मृत्यु तो आनी है, तो उस मृत्यु को साकार कैसे किया जाए। उसके बाद हम एक और राजा को देखते हैं, जैसे महाराजा इंद्रद्युम्न। महाराजा इंद्रद्युम्न भक्ति में लीन थे, भगवान की तपस्या में लीन थे। अगस्त ऋषि एक बार उनके सामने आए और अगस्त ऋषि भी दुर्वासा ऋषि की तरह हॉट टेम्पर के, है ना, उसमें माने जाते हैं कि वो भी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो अगस्त ऋषि ने सोचा मेरा आदर नहीं किया इंद्रद्युम्न महाराज ने, तो उनको शाप दे दिया कि आप एक ऋषि के आने के टाइम पर भी एक पशु की तरह खड़े थे तो तुम हाथी बन जाओ। इंद्रद्युम्न महाराज हाथी बन गए और हम सब लीला जानते हैं गजेंद्र मोक्ष की, कि वास्तव में इंद्रद्युम्न महाराज ने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों इतना बड़ा शाप दे रहे हो, मैं तो भगवान की भक्ति में लीन था, मैंने नहीं देखा कि आप आए हो। उन्होंने उनका शाप श्रोधाय किया कि भले मुझे जानवर भी बना दो, ये भी भगवान की इच्छा है। अब भगवान की वाकई में इच्छा थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो जल्द से जल्द उनकी ये शारीरिक मुक्ति हो जाए और भगवान को प्राप्त करें। और हमने देखा कि गजेंद्र के अवतार में उन्होंने गजेंद्र के रूप में उन्होंने भगवान उनको अपने मुक्ति प्रदान कर दी। तो ये भगवान की इच्छा थी कि उनको जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाए। तो भौतिक वस्तु में आसक्ति हमें कभी भी इम्यूनिटी प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए भगवान बताते हैं 2.41 में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः, कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, यानी कि जो भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं। उनकी बुद्धि, उनका लक्ष्य एक ही होता है, वो एकत्व में आ सकते हैं। लेकिन जो भौतिक धरातल पर होते हैं, बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः, यानी कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, जो भक्ति में आध्यात्मिक धरातल पर स्थित नहीं होते हैं, वो कभी भी समाधि में, मतलब वो कभी, उनकी बुद्धि जो है ना, वो अलग अलग चीजों में। अब ऐसे हम सोच सकते हैं ना कि जिस तरह से वो भौतिक, वो आध्यात्म में एकत्व होता है, उसको भी तो वो इंद्रिय तृप्ति में भी एकत्व में होता है, समता में होता है। लेकिन आध्यात्मिक में आपका गोल एक ही होगा ना, एक ही गोल होगा, भले परमात्मा हो, ब्रह्म हो या भगवान हो, आपने क्या चॉइस किया, लेकिन उधर ही। लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति की बात आती है तो इंद्रिय एक कहाँ है? कभी आपको कुछ सुनना होगा, कभी आपको कुछ खाना होगा, कभी आपको कुछ स्पर्श करना होगा, मतलब इंद्रिय तृप्ति में कभी एकत्व नहीं हो सकता। फिर तो आपकी बुद्धि अलग अलग की, इस तरह से मुझे ये आनंद प्राप्त करना, इस तरह से ये आनंद प्राप्त करना, इस तरह से ये आनंद बड़ी एक हो, लेकिन वो अलग अलग स्तर पे होता है, क्योंकि वो भौतिक है। भौतिक में कभी भी आप एकत्व में नहीं रह सकते, समता में नहीं रह सकते, फिर उसमें आपको क्या लगेगा, इसमें आनंद नहीं आ रहा है, ये में आनंद नहीं आ रहा है, मुझे इससे करूंगा तो आनंद आएगा। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारा गोल क्या होता है, बस वही कृष्ण को प्रसन्न करने की। फिर उसके लिए आपको कोई भी कार्य मिल रहा है भक्त को, तो उसमें वो क्या देख रहा है कि मैं इस कार्य से, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड, बस इस मौजूदा पल को, इस प्रेजेंट मोमेंट को मैं कैसे आपकी सेवा में और आपकी प्रसन्नता के लिए यूज कर सकूं। उसका गोल एक होता है, दृढ़ प्रतिज्ञा होता है वो। बेशक इसका मतलब ये नहीं होता है कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो पत्थर की तरह होते हैं, उनको भौतिक सुख दुख का कोई असर नहीं होता है। लेकिन वाकई में वो भौतिक में होते नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, वो अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी इमोशंस होते हैं, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर जो वहां पर मेलो है जिसको रस कहा जाता है, भगवान और भक्त के मध्य में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसको चलो रूप गोस्वामी ने अत्यंत ही सुंदर ढंग से भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। परंतु जब हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो भगवान बता रहे हैं श्लोक में, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, कि वो ब्रह्म की तरह निर्दोष होते हैं। और श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। यानी भगवान के अंदर निर्दोष हैं वो, क्यों? क्योंकि उनके अंदर घृणा भी नहीं है, आसक्ति नहीं। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतान। इसी प्रकार जैसे हम लोगों ने कल भी पढ़ा कि जो विद्या विनय संपन्न वो क्या करता है, ब्राह्मण गवि हस्तिनी चंडाल कुत्ता ब्राह्मण सबको इक्वल दिखता है। तब भगवान भी किसी से आसक्ति नहीं होती, किसी से घृणा नहीं होती। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। यानी कि जब तक ये द्वंद्व समाप्त नहीं होते हैं तब तक तो हम अधिकारी नहीं बनते, अधिकारी ही नहीं बन रहे हैं वैकुंठ जाने के। यानी कि अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य को हम देखें, उसमें लिखा है जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है वह बद्धजीव बना रहता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात के द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। यानी कि जब तक आप भौतिक धरातल पर रहोगे तब तक आपको द्वंद्व नजर आएंगे, लेकिन समचित्ता जब आपको प्राप्त होगी, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा कि मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है और सबका लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, फिर बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। और दूसरे शब्दों में उसे भौतिक जगत के में वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। कब? जब वो समता में स्थित होता है। यानी कि अब ये समता ही प्राप्त करना, ये जो ब्रह्म तक प्राप्त करना वो ये काफी नहीं है। भगवान कहते निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता, क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित होता है इसलिए वो ब्रह्म की तरह ही निर्दोष होता है। लेकिन ये ब्रह्म में स्थित होना एंड नहीं है, एक चीज है जो उससे आगे भी है। और भगवान कहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोषयति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। कि जो ब्रह्म भूत ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं वो सदैव प्रसन्न रहते हैं, ना शोचती ना कांक्षति, वो ना ही कभी इच्छा करते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो ये प्राप्त हो, नहीं। उसको जो भी प्राप्त हुआ है उसमें उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है और वो ना शोक करते हैं और ना ही इच्छा करते हैं। समः सर्वेषु भूतेषु, यहाँ पर भी देखो भगवान ने समता के विषय में बताया कि वो सबके लिए सम होते हैं और उसके बाद क्या प्राप्त करते हैं, मद भक्तिम लभते पराम, फिर उनको मेरी परम भक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया 18.54 में कि जीव का वास्तविक लक्ष्य जो है वो तो भगवान की शुद्ध भक्ति है, लेकिन उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी पहले आपको ब्रह्मबोध अवस्था में यानी कि समता में आना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति का मतलब यह होता है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि आप फिर आप ये इच्छा नहीं कर सकते कि ये प्राप्त हो ये प्राप्त नहीं हो, ये अच्छा लगता है ये नहीं, फिर आपको कोई और इच्छा नहीं होगी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम, अनुकूल है ना कृष्णानुशीलनम भक्ति, जो बस कृष्ण को अच्छा लगता है वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ तक आने से भी पहले समता में तो आपको आना ही पड़ेगा। तो समता के बगैर यानी कि इक्वेमिनिटी के बगैर, चाहे आप ब्रह्मवादी बनना चाहो या परमात्मावादी कुछ भी हो, अगर कोई ब्रह्म में स्थित होकर वो सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी ये तो है ना प्रिंसिपल है कि उसको पहले समता में आना पड़ेगा। और इस समता को तो ब्रह्मभूत प्रसन्न, उस समता को ही प्राप्त करने के बाद ही हमें ब्रह्म मद भक्तिम लभते परम, भगवान की परम भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात ये भी समझने की है कि भले ही वो जीवन मुक्त हो जाता है, भगवान ने क्या कहा कि इहैव तैर्जितः सर्गो, जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बच जाता है, येषां साम्ये स्थितम्, वो भले इक्वेमिलिटी में रुक जाता है, समता में एकत्व में आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शारीरिक कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। हाँ, अगर वो ज्ञानी है तो उसको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, भले ज्ञानी है वो आगे नहीं कर रहा लेकिन जो पहले कर चुका है वो तो उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त है उसके लिए भले उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया है लेकिन फिर भी भगवान उसको वही सिचुएशन देते हैं जो उसके लिए अच्छी होती है, उसके लिए उनके गुणगान के लिए आवश्यक होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया है ना, श्रील प्रभुपाद जी पूर्ण समर्पित भगवान को लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आया, तो वो भगवान ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि दुनिया देखे कि इतना श्रील प्रभुपाद जी को कष्ट था उसके बावजूद भी कितना डिटर्मिनेशन था कि मुझे गुरु आज्ञा को पालन करना है, गुरु के लिए सेवा करनी है, और इस एज में भी वो अमेरिका गए और इतना सारा ये सब। भक्त के ऊपर जब कष्ट आता है ना तो फिर वो भगवान की योजना से आता है। जैसे अगर ऐसे कोई भी हमारे गुरु महाराज को कष्ट होता है फिर भगवान की योजना से इसलिए होता है कि फिर उसके शिष्य देखेंगे तो उससे सीखेंगे कि हमारे कारण हमारे गुरु महाराज ने हमारे अपराधों को अपने सिर लिया और हमारे कारण गुरु महाराज को इतना कष्ट भोगना पड़ता है, हृदय के अंदर गहरा सदमा होता है और शिष्य सुधरने लगता है गुरु की इस कंडीशन को देखकर। लेकिन गुरु को इस सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता, गुरु को पता होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, शरीर को भले जो भी हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि जैसा कि ऊपर कहा गया समानता यानी समता ही आत्म साक्षात्कार का लक्षण है, कि जब आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हो तो ये द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, और इसके विषय में कल भगवान हमें आगे बताएंगे। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छी सेवा कर सकूं और गुरु और गौरांग को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण।